ओम शांति। दिल वाला बाबा के दिल तखत नशिन, सबके दिल को ठीक कर। दिल में बाबा को बिठाने वाले डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हम सबके मध्य में है। देखिए नाम ही कितना शक्तिशाली है। सब कुछ जैसे बाबा ने किया, सब कुछ करते भी बाबा गुप्त रहे, ऐसे सतीश भाई जी भी शक्तिशाली सेवाएं करते हुए भी गुप्त पुरुषार्थी भी है और गुप्त बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले भी है। सतीश भाई जी को बाबा ने अपना बनाते हुए 29 साल कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग 20 वर्ष से आप बाबा के महायज्ञ में डॉक्टर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं, तो साथ ही साथ आपका विचार सागर मंथन, आपका गुप्त पुरुषार्थ अनेक भाई बहनों को प्रेरणा देता रहता है। तो बहुत सुंदर सुंदर विषयों पर आप क्लासेस कराते हैं, भच्चियों में क्लासेस कराते हैं, बाबा के सीजन में भी आप क्लास कराते हैं और विशेष तौर पर हम सबका ये परम सौभाग्य है कि दादी जी के स्मृति दिन के निमित्त ही हम सब यहाँ भच्ची में हैं। पर दादी प्रकाश मणि जी के आप विशेष डॉक्टर के रूप में सेवारत रहे, अंगद संग रहे और बहुत ही दादी की दुआएं आपने सेवा करते हुए प्राप्त की हुई है। तो आज हम सतीश भाई जी के द्वारा सुनेंगे मन जीते जगत जीत। बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम्हें जगत जीत बनना है, पर मन जीत नहीं बने तो जगत जीत नहीं बन सकते हैं। यही कहेंगे कि आप वर्तमान समय ट्रॉमा सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भारत सरकार का DRDO के साथ मिलाकर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका कार्य अभी भी शांतिवन में चलता है, जिसका नाम है कारोनरी हार्ट डिसीज थ्रू राजयोगी लाइफस्टाइल, जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम जो है वो सामने आ ही रहे हैं। तो बाबा को आप प्रत्यक्ष करने में इस सेवा में भी लगे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास, विश्वास से बनता है रिश्ता और रिश्तों से बनता है कोई खास। वो कौन है जो देते हैं अंधेरों में और दुखी व्यक्तियों को साहस, रहते हैं पल पल बाबा के, दादियों के और ब्राह्मण परिवार के पास। ऐसे प्यारे बाबा के नूरे रत्न हैं हमारे सतीश भाई जी। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि आप मन जीत जगत जीत विषय पर हम सभी को लाभान्वित कराएंगे और आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है।
ओम शांति। मन जीते जगत जीत। इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी शक्ति है? संकल्प शक्ति है। तो आज हम इसी बात पर कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे संकल्प, हमारे संकल्प भी दो तरह के होते हैं ना, वैसे तो चार तरह के संकल्प होते हैं, किंतु मुख्य अगर हम दो कहें, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव संकल्प शक्ति नहीं, वो तो संसार को डिस्ट्रॉय करती है, किंतु पॉजिटिव संकल्प शक्ति। तो हम नेगेटिव संकल्प पर विजय प्राप्त कर लें तो हम जगत जीत बन सकते हैं, नेगेटिव और बैड संकल्प पर विजय प्राप्त करें तो आज इसी मन की हम गहराई में जाएंगे कि कैसे हम मन की महीनता में जाकर के क्या काम हमारे सामने है, हमारे सामने क्या लक्ष्य है। कई बार होता है ना, हमें काम पूरा पता रहे ना कि हमें इतना काम करना बाकी है, तो हम लगन लगा के लग जाते हैं, हमारा एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हैं कैसे हमें इस पे विजय पानी है। तो मन क्या है, मन की गहराई क्या है, और किस तरह से हम इस पे विजय पा सकते हैं, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम फिर दो मिनट के लिए मन बुद्धि को वापस हम एकाग्र करते हैं, एकदम सीधे होके बैठ जाएं और एकदम से एकाग्र होके अपने मन और बुद्धि को सिर्फ एक बाबा की याद में लगा लें। बाबा हमसे कितनी दूर है, बाबा हमसे कितनी दूर है, सूक्ष्म वतन कितनी दूर है, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है ना, कितनी दूर है, एक सोच की दूरी पर ना, सोचे और पहुंचे ना, तो बाबा हमारे साथ है ऐसे फील करें। बाबा, बाबा से जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों की एनर्जी कहो, लाइट करो, मुझ में आ रही है और मुझ आत्मा से होती हुई सारे शरीर में जा रही है, ऐसे फील करके दो मिनट के लिए बैठें। इसी में केंद्र अपने आप केंद्रित कर लें, इसी में एकाग्र कर लें। ओम शांति। आज की मुरली भी हमने सुनी, तो बाबा ने आज की मुरली में कहा, सबसे जो महान बनने का रास्ता क्या है, महान बनने का तरीका क्या है, संकल्प किया और स्थित हुआ, चाहे अपना अनादि स्वरूप हो, चाहे आदि स्वरूप हो, चाहे हमारा मध्य स्वरूप हो, मध्य पूज्य स्वरूप हो, या वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप हो, या फरिश्ता स्वरूप हो, ये पांच स्वरूप है ना जो हमारे, तो ये पांचों स्वरूप में हम संकल्प करते ही स्थित हो जाए, तो वो भी तो मन की शक्ति है ना, मन के आधार पे हो सकता है। तो जो हमें 108 रत्न जो बनते हैं उनको हम महान कहते हैं, है ना, क्योंकि उसको विश्व के सभी आत्माएं याद करती हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो भी 108 की माला फेरते हैं ना, क्रिश्चियंस हो, वो भी अपनी माला, सभी ये 108 की माला सभी धर्म वाले फेरते हैं। तो ये 108 आत्माएं सर्वप्रिय हैं, सारे विश्व में महान है, तो वो 108 माला बनना, माला का दाना बनना, मैं महान बनना, तो वो सब महान कैसे बने, कैसे महान बने, उन्होंने महीनता में गए, वो पुरुषार्थ की महीनता में गए, ज्ञान की महीनता में गए, योग की महीनता में गए, और योग का प्रयोग करने के लिए भी, सपोज हमें योग का प्रयोग अपने ऊपर करना है, या किसी और व्यक्ति के ऊपर करना है, किसी बीमारी पे करना है, किसी परिस्थिति के ऊपर करना है, या इवन मनसा सेवा भी करनी है, मनसा सेवा भी क्या है, योग का प्रयोग है ना, तो महीनता में जाना पड़े, है ना। अगर जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रकृति के पांचों तत्व हम सभी यूज करते हैं, आकाश को भी यूज करते हैं, अग्नि भी, वायु भी, जल भी और पृथ्वी भी यूज करते हैं, किंतु हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं, किंतु वैज्ञानिक क्या करता है, वायु को यूज करेगा, वायु की महीनता में जाएगा, वायु में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे वो वायु के मॉलिक्यूल्स की क्या स्ट्रक्चर है, कैसे उसकी महीनता में जाके वो कुछ चीज बना लेता है ना, एटम की महीनता में जाएगा तो एटम बम बना देता है ना, अगर वायु की महीनता में गया कैसे उसको हम यूज करके, कैसे कंट्रोल करके उसका एसी बना दे, पंखा बना दे, कितनी सारी चीजें बनाई ना, तो इस तरह से अग्नि का कंट्रोल करके उन्होंने एयर कंडीशनर बना दिए और हीटर, क्या क्या चीजें, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके बनाया ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजों की महीनता में जाने से हम महान बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ज्ञान और योग की महीनता में जाएं तो क्या बन सकते हैं, 108 की माला के दाने बन सकते हैं, राइट। चलिए आज चलते हैं मन की महीनता में, चलते हैं मन क्या है और मन की महीनता क्या है, है ना। देखो मन जो है तीन प्रकार के मन है, एक तो अनकॉन्शियस मन है ना, अनकॉन्शियस मन में ना, अचेतन मन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, सबकॉन्शियस, और एक है चेतन मन जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। 70% मन लगभग अनकॉन्शियस माइंड है या अचेतन मन है, जिसका जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और 15% मन लगभग हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और 5% मन ही हमारे कॉन्शियस है, कॉन्शियस माना चेतन है, जिसपे हमारा कंट्रोल है। और बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आपका टारगेट क्या है, क्या टारगेट है बोलो बोलो। बाबा ने मुरली में बार बार कहा है कि आपकी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर होनी चाहिए, है ना। आत्मा की कंट्रोलिंग पावर रूलिंग किस पे होनी चाहिए, मन पर, है ना। मन का कनेक्शन पांचों कर्मेंद्रियों से है, तो पांचों कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल कैसे करेंगे आप। मन पे कंट्रोल होगा तो फिर आप पांचों कर्मेंद्र पे कंट्रोल कर सकते हैं। और जबकि 5% मन ही मेरे कॉन्शियस है, तो मैक्सिमम जो स्थिति इस समय हमारी स्थिति क्या है कि सिर्फ 5% ही हम अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर है। 15% सबकॉन्शियस, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, और 70% पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। इससे जब मुरली सुन रहे होते हैं सुबह, जैसे आज अपने हमने मुरली सुनी ना बाबा की, बाप समान बनने के चिन्ह, संपूर्ण बनने के चिन्ह, तो मुरली सुनते समय कितना उमंग उत्साह था, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज बाबा ने ऐसा कहा, सारा दिन बाप के साथ साथी बन के रहेंगे, साक्षी होके रहेंगे, नहीं कैसे कैसे बाबा के साथ हम अनुभव करेंगे, माताओं के बारे बाबा ने कहा है ना, तो नशा चढ़ा ना, कैसे बाबा ने हमको क्या किया, बाबा ने हमको क्या कर रहा है, कैसे चला रहा है, कैसे बाबा सदा हमारे साथ है, हर सेकंड हमारे साथ है ना। पर क्या वो अनुभूति रही, सुबह से वो अनुभूति रही, हर समय हर सेकंड। बाबा ने कहा हर सेकंड हर संकल्प। वारिस आत्मा की क्वालिटी क्या है, वारिस आत्मा की निशानी क्या है, वारिस आत्मा हर सेकंड हर संकल्प हर श्वास में क्या अनुभव करती है, बाप का साथ। वो अपने को बाप की याद और सेवा में बिजी रखती है, उसका हर संकल्प और हर सेकंड बाबा की सेवा में और याद में बीतता है, यज्ञ सेवा में बीतता है, तो वह है वारिस क्वालिटी आत्मा, है ना। वारिस माना 108, महान कहो वारिस कहो, ना ठीक है ना। तो ऐसा हमें बनना है, तो कैसे वो श्वासों श्वास पे क्यों नहीं, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, हमारा कंट्रोलिंग पावर चाहते तो हम हैं, किंतु हमारी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नहीं है। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से मान सकते हो, जैसे एक बड़ा हिमखंड होता है ना, आइस का आइसबर्ग होता है, वो पानी में डूबा हुआ होता है, या आप एक बर्फ का टुकड़ा लें उसको पानी में डाल दें, कितना कितना पार्ट पानी में डूब जाता है, लगभग 92% पानी में डूब जाता है, 8% ऊपर रहता है। तो अब अगर मान लो समुन्द्र में करंट नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है और हम ऊपर हवा ऐसे बह रही है, तो किस तरफ जाएगा हिमखंड, किस तरफ जाएगा आइसबर्ग, किस तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा। अंदर पानी का करंट राइट टू लेफ्ट है और ऊपर हवा बह रही है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि 92% पानी में है और उसका करंट 92% किस तरफ है, राइट टू लेफ्ट हुआ ना। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमारे पुराने संस्कार पुराने स्वभाव संस्कार का करंट किस तरफ है, तमो प्रधानता की तरफ है ना। सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरा हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या भरा हुआ है, तमो प्रधानता भरी हुई है, विकार भरे हुए हैं, पाप कर्म भरे हुए हैं, है ना। अनकॉन्शियस माइंड में क्या भरा है, 70% जो 63 जन्म में मैंने पाप किए हैं वो स्मृतियां रिकॉर्डेड है, वो सब भरे हुए हैं, और 15% इस जो सबकॉन्शियस माइंड में भी पाप भरे हुए हैं, विकर्म किए भरे हुए हैं। तो ना चाहते हुए भी हम क्या होता है, फिर भी हमारा ध्यान बाबा की श्रीमत को छोड़ के कौन सी बात में लग जाता है, साधारण बातों में लग जाता है, चलो नेगेटिव में नहीं जाता पर व्यर्थ बातों में तो लग जाता है, इतना तो हम आगे पहुंचे हैं नहीं, किंतु कभी कभी नेगेटिव व्यर्थ के साथ नेगेटिव भी जुड़ा होता है तो वहां भी चला जाता है नहीं, ऐसा होता है। चलिए हम इसकी गहराई में चलते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे बनता है, चेतन मन कैसे बनता है और अनकॉन्शियस मन कैसे बनता है। देखिए जब हम जब तक हमने 21 जन्म लिए, 8 जन्म सत्ययुग के और 12 जन्म त्रेता में, उसमें हम कैसे, शुरू में कैसे थे हम जब आए, जब सत्ययुग में हमारे कैसे सत्व प्रधान थे, हमारी बुद्धि कैसी थी, सत्व प्रधान थी, मन कैसा था, मन भी सत्व प्रधान था। अब बुद्धि क्या है और मन क्या है, तीन चीजें ना, बुद्धि मन और संस्कार, राइट। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि में बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट होते हैं और मन के भी चार एस्पेक्ट होते हैं, है ना। अब इसके हम आगे डिफरेंशिएशन पे जाएंगे। मन के चार एस्पेक्ट कौन से हैं, आप सबने पहले सुना हो, मुझे पता नहीं। मन के चार एस्पेक्ट हैं, इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, है ना। बाबा ने 99 में, वैसे तो बाबा ने पहले भी इस बात पर कहा था, किंतु बाबा ने 31 दिसंबर 99 पिछली सेंचुरी का लास्ट दिन बाबा जब आए थे, तो बाबा ने इसमें बड़ा क्लियर बताया था कि मन के चार एस्पेक्ट हैं, चार डायमेंशंस हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। स्मृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेमोरीज, वृत्ति को एटीट्यूड्स, भावनाओं को इमोशंस और थॉट्स, संकल्प या विचार। तो ये चार बातें हुई, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो ये मन के चार, स्मृति के अनुसार हमारी स्थिति होती है, जैसी हमारी स्मृति होती है, जो हमारी स्मृति में होता है, तो हमारी वैसी ही क्या होती है, स्थिति होती है। और फिर जैसी हमारी स्थिति होती है, उसी के अनुसार हमारी समर्थी होती है, एबिलिटी। एबिलिटी माना, एबिलिटी माना, एबिलिटी माना करने की शक्ति, कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर सपोज मैं कहूं, मेरे को स्मृति में है कि मैं हार्ट पेशेंट हूं, तो मेरी स्थिति कैसी होगी, वैसे ही चेहरा दिखाई देगा हार्ट पेशेंट जैसा। और समर्थी क्या होगी, मुझे कोई पहाड़ पे चढ़ जाओ, सामने वाले पहाड़ पे तो चढ़ सकता हूं, नहीं नहीं मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, मैं कैसे चढ़ सकता हूं, नहीं। जैसी स्मृति वैसी समर्थी आई ना, तो अगर मैं कहूं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक है, मेरा हार्ट ठीक है, फर्स्ट क्लास है, सामने वाले पहाड़ पे चढ़ना, क्यों नहीं अभी चढ़ते हैं, चलो, नहीं, समझ रहे हैं मेरे। तो इस तरह से स्मृति के आधार पे ही हमारी समर्थि, एबिलिटी होती, एबिलिटी डू होती है। और फिर स्मृति के आधार पे हमारी वृत्ति बनती है, हमारा एटीट्यूड बनता है जीवन के प्रति, है ना। जो जैसे मेरी स्मृति होगी, सपोज मैंने कहा मैं हार्ट पेशेंट हूं, तो मेरी वृत्ति एटीट्यूड क्या होगा जीवन के प्रति, थोड़े से दिन बात की है, कब पता नहीं कब क्या होगा, अभी क्या ज्यादा सोचने की बात है, है ना, लंबी प्लानिंग क्यों करूं, नहीं, एटीट्यूड वैसा होगा ना। वायुमंडल कोई बात भी होगी तो मेरे से कोई प्लानिंग की बात करेगा तो मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं बस मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, है ना। भगवान डॉक्टर ने बोला है पता नहीं कब तुम्हारा हार्ट में दर्द तो होता ही रहता, कब वापस आखिरी हार्ट अटैक आएगा और चले जाओगे, नहीं ऐसा होता, डर लगता रहता ना अंदर से। तो जैसी फिर जैसी स्थिति, स्मृति के आधार पर हमारी वृत्ति बन गई और हमारा एटीट्यूड जीवन के प्रति ऐसा ही हो गया, राइट, नेगेटिव हो गया। और अगर हमारी पॉजिटिव होती है तो जैसे दिल वालों की होती है ना, दिल वाले माने जो हार्ट पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, वो ऐसे सोचते आते कब मर जाएंगे, कब मर जाएंगे, हम चल नहीं सकते, हमारा डॉक्टर ने मना किया है। और जब यहां पर आते दिल वाले बन जाते हैं वो, तो फिर हमको क्या होता है, उनको कहते हैं यहां से दिल्ली चलो पैदल चलेंगे, है ना, कहते हैं हम तैयार हैं, है ना, है ना, तो हम तैयार है, हम कौन कौन नाम लिखवा दो, सबसे पहले लोग भागते हैं नाम लिखवाने के लिए ना। तो मतलब बेसिकली एटीट्यूड बदल गया ना, तो हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। जैसे अगर हमारी स्मृति पॉजिटिव है, उतना हमारा एटीट्यूड भी कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब एटीट्यूड से, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, राइट। वृत्ति से क्या बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है और वृत्ति से वायुमंडल, राइट। और फिर वृत्ति से ही भावना बनती है, ये आपस में कनेक्शन है, स्मृति से वृत्ति और वृत्ति से भावना, फिर हमारी भावना वैसी बनती है, राइट। तो भावना से क्या बनते हैं, वायुमंडल कहां तक जाता है, मैं यहां बैठा हूं, मेरे मन की कैसी वृत्ति है, उसके अनुसार हॉल का वायुमंडल बन गया, ठीक है। जिस जगह पर, जिस कमरे में होंगे, जिस हॉल में होंगे, जिस स्थान पर होंगे, वहां का वायुमंडल वैसा पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं, वाइब्रेशन कहां तक जाते हैं, कहां तक जाते हैं बताओ, भावना दो लोगों के बीच में होती है ना, एक माँ और बच्चे के बीच में भावना होती है जैसे ना, तो माँ बैठी है दिल्ली में, बच्चा बैठा है माउंट आबू में, तो क्या होगा? दोनों के बीच में वाइब्रेशंस फ्लो करते हैं, 700 किलोमीटर वाइब्रेशन फ्लो कर रहे हैं। आप बॉम्बे से आए, आपकी आपकी मदर या आपके फादर या आपके बच्चे बॉम्बे में बैठे हुए है ना, तो आपके बीच में क्या है? वाइब्रेशंस है ना, टेलीपैथी कहते हैं ना, कि वो जो जो कुछ आप करते हैं उनको टच हो जाता है ना, या आप वो जो कर रहे हो आपको टच हो जाता है ना, क्योंकि भावना ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हो सकती है। सपोज हम जब मनसा सेवा करते हैं, हम क्या करते हैं, किस भावना से हम लोगों को सकाश दे रहे हैं, तो उनको वाइब्रेशन फील होते हैं। जैसे दादियों के द्वारा हमको वाइब्रेशन, दादी कहीं भी हो हमको वाइब्रेशन फील होते हैं ना, कहीं भी होते हैं। बाबा के वाइब्रेशन में हर जगह फील होते हैं ना। तो जैसे बाबा जब आते हैं डायमंड हॉल में, उसके पहले वायुमंडल कैसा होता है, और जब बाबा आ जाते हैं तो कैसा वायुमंडल हो जाता है? रूहानियत का वायुमंडल आ जाता है ना। तो बाबा की वृत्ति सबके प्रति कैसी? आत्मिक है। तो वायुमंडल कैसा हो जाता है? सारा आत्मीयता वाला हो जाता है, ठीक है। और वाइब्रेशन होते दूर, जैसे आप सपोज अमेरिका और इंडिया, बच्चा है अमेरिका में, मां है इंडिया में, तो बच्चा कहता है मम्मी मैं अभी प्लेन में बैठ रहा हूं, इंडिया आपके पास आ रहा हूं, तो क्या होता है दोनों के बीच में? तो 20,000 किलोमीटर भी वाइब्रेशन फ्लो करते हैं ना। तो जो दो व्यक्तियां, दो ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में वाइब्रेशन फ्लो करते हैं, ठीक है, उसमें कितने भी किलोमीटर हो सकता है। और संकल्पक, और फिर जैसी भावना होती है वैसे विचार चलते हैं, राइट। तो संकल्प के आधार पर ही हमारे क्या बनता है? संकल्प के आधार पर सृष्टि बनती है। वाइब्रेशंस का असर तो आदमी का आदमी पर पड़ता है, किंतु संकल्पों का असर किस पे पड़ता है? सारी सृष्टि पर, मतलब मनुष्यों पर भी पड़ता है और पांचों तत्वों पर पड़ता है। भावनाओं का असर तत्वों पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं यहां हूं और मेरे संकल्प चल रहे हैं, तो मेरे संकल्प से क्या होगा? ये मान लो ये तो खैर जिंदा पेड़ नहीं है, जिंदा भी पेड़ हो तो यहां पर पेड़ पर भी असर पड़ेगा, कुत्ते बिल्ली पर भी असर पड़ेगा, कोई जानवर होगा उस पर भी असर पड़ेगा, है ना। कोई योगी होता है तो योगी संकल्प, उसके संकल्प सबके प्रति कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो सामने वो शेर भी आ जाए ना, उसको भालू भी आ जाए, भालू भी आकर उसको अटैक नहीं करेगा, शेर भी कभी अटैक नहीं करेगा, नहीं ऐसा? आसपास पेड़ पौधे भी अच्छा अच्छा फूल पौधे देना, फूल पत्ते आने शुरू हो जाते हैं जो कभी नहीं आते थे, है ना। हर चीज पे असर पड़ता है, हर तत्व पे असर पड़ता है। सांप भी काटेगा नहीं उसको, है ना। आपने कभी सुना किसी योगी को सांप ने काट लिया हो, सांप के काटने से मर गया हो, भालू ने उसे खा ली, भालू ने उसको डैमेज कर दिया हो, या शेर ने उसको खा लिया हो, कभी सुना आपने? सुना कभी जंगल में किसी? तो सच्चा योगी होगा तो उसको कभी भी, उसको कोई भी कोई डैमेज नहीं कर सकता है, सांप नहीं काट सकता है, राइट। तो उसका असर पूरी सृष्टि पर पड़ता है, पांचों तत्वों पर, मतलब इवन सूर्य चांद तारों पर पड़ता है। मेरा जो मैं संकल्प करता हूं, 700 करोड़ लोगों पर उसका असर पड़ता है। दूर है उनके ऊपर कम पड़ेगा, किंतु नजदीकों पर ज्यादा पड़ता है, राइट। और जिनसे मैं कनेक्टेड हूं उनको ज्यादा पड़ता है, तो इस तरह से उनके ऊपर असर पड़ेगा। और फिर 10 गुना आके मुझे वापस अटैक करता है। अगर मैं नेगेटिव संकल्प किया तो क्या होगा? 10 गुना आके वापस मेरे को नेगेटिव असर पड़ेगा। और मैंने पॉजिटिव संकल्प किया तो 10 गुना आके वापस मुझे पॉजिटिव इंप्रूव, मेरा उमंग उत्साह बढ़ेगा, राइट। तो कैसे संकल्प करने चाहिए? पॉजिटिव संकल्प कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव टीम है ना, तो पॉजिटिव टीम कहां से आएगी और नेगेटिव टीम कहां से आती है? मतलब पॉजिटिव मन कहां से आता है और नेगेटिव टीम मन कहां से आता है, बताओ? हाँ, पॉजिटिव टीम सत्य से जन्म लेती है, ट्रुथ से जन्म लेती है। अगर आप सत्यता में स्थित होंगे ना, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, ये संसार रूपी ड्रामा का सत्य क्या है, ये ड्रामा संसार रूपी ड्रामा चल रहा है, सत्य क्या है, अगर आप इसमें स्थित हैं तो आपकी टीम पॉजिटिव होगी, स्मृति पॉजिटिव होगी, वृत्ति पॉजिटिव होगी, भावना पॉजिटिव होगी, संकल्प पॉजिटिव उठेंगे, ठीक है, राइट। अगर आपके मन में आपकी टीम ने, अगर आप असत्य पे टिके हुए हैं, झूठ पे टिके हुए हैं, जो आप नहीं है वो आप बन के रहते हैं, तो आपकी टीम कैसी होगी? कैसी होगी? नेगेटिव होगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन लेता है एक आम आदमी, इंस्पेक्टर की ड्रेस पहनता है, तीन बैच 3 स्टार लगा लेता है, ठीक है, और हाथ में डंडा रखता है और वो सड़क पे जा रहा है, तो उसके मन में कैसे विचार उठ रहे होंगे, कैसी भावना होगी, कैसे एटीट्यूड होगा, कैसी स्मृति जागृत होंगी। सामने से कांस्टेबल आ रहा है, तो कांस्टेबल को देख के उसको डर लगेगा कि वो ऑर्डर करेगा उसको क्या करेगा, है ना। नेगेटिव विचार में पकड़ाना जाऊं, मुझे पहचान ना लेने, नेगेटिव संकल्प उठेंगे ना, नेगेटिव भावना आएगी, नेगेटिव एटीट्यूड दिखाई, चेहरे पे नेगेटिव स्मृति जागृत होगी, हाँ उसको किसी ने पकड़ा था, खबर मैंने पहले सुनी थी, फिर ऐसा हुआ था, फिर पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है, ऐसे करके। तो जस्ट वो नेगेटिव अपने आप को फीन कर रहा ना कि मैं इंस्पेक्टर हूं, तो नेगेटिव टीम होगी ना। और वही रियल इंस्पेक्टर हो तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, सामने पुलिस वाले को देखे डरेगा नहीं, डरेगा ना, तो उसकी टीम स्मृति वृत्ति भावना संकल्प पॉजिटिव। तो ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया। ऐसे ही जब हम अपने को आत्मा समझ के हर काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे ऑटोमेटिक हमारे स्मृति पॉजिटिव आएगी, वृत्ति पॉजिटिव, वो फाइलें जागृत होती हैं। हमारे यहाँ सब कुछ स्टोर फाइलों में स्टोर होता है, जिस कंप्यूटर में फाइलें होती है ना, ऐसे हमारे सब कुछ स्टोर फाइलों में होता है, राइट। तो ये हमारी मन के चार एस्पेक्ट है, ऐसे बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट है। पहला जो बुद्धि का एस्पेक्ट है वो है दिल, उसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। ये दिल की बात नहीं है, जब भी हम कहते दिल एक मंदिर है, दिल ये वाला दिल मंदिर है क्या? इस दिल में सिर्फ चार चैम्बर है, खून ही खून है। इस दिल में कोई आके रहने लगे तो क्या होगा, खून में लथपथ रहेगा, नहीं, और 70 बार उसको अंदर बाहर होना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि कुछ अंदर रहता ही नहीं है ना, और जब धड़केगा तो बाहर निकलेगा, फिर अंदर आएगा, फिर बाहर, तो तंगी हो जाएगा बेचारा ना। इस दिल में कोई रह सकता है क्या? ये दिल मंदिर नहीं है, है ना। तो वो दिल की बात, कौन सा दिल, जब हम दिल की बात करें, दिल्ली तो है, दिल की मानता नहीं, दिल मेरा मानता नहीं, ना दिल एक मंदिर है, है ना। तो वो दिल बाबा का सच्ची दिल, साफ दिल, ये दिल की बात है, ये सच्ची दिल साफ दिल की बात नहीं, ये दिल नहीं है, ये तो एक पंप है, है ना। हाँ, किंतु इस दिल का कनेक्शन उस दिल से जरूर है, उस दिल में ऊपर नीचे कुछ होता है, इस दिल को कुछ होता है, इस दिल में बीमारी कारण भी वही दिल है, ना। तो आत्मा का दिल, राइट, ये बुद्धि का एक एस्पेक्ट है, पार्ट नहीं है। कल कोई पूछे आपके मन के चार पार्ट, मन के चार पार्ट नहीं होते, मन के चार एस्पेक्ट डायमेंशन होती हैं। ऐसे बुद्धि के भी चार, बुद्धि को फिजिकल चीज है क्या, मन कोई फिजिकल चीज है क्या, ऐसे बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट हैं, डायमेंशन हैं। पहली डायमेंशन या एस्पेक्ट कौन सा है, वो है दिल, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में अंतरात्मा कहते हैं। तो वो इसमें क्या होता है, आत्मा में, इस दिल में आत्मा की जो सात एनर्जी है ना, जो आत्मा के सात इननेट क्वालिटीज, जिसको हम फर्स्ट नेचर भी कहते हैं। आत्मा की फर्स्ट नेचर क्या है, आत्मा की फर्स्ट नेचर ये है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, इस सीक्वेंस में है। ये भी ध्यान रखने की बात है, सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं कि पहले ज्ञान बोल दिया, फिर शांति बोल दी, बाद में आनंद बोल दिया, फिर या पहले शक्ति बोल दी, नहीं, ज्ञान से पवित्रता है ना। सार रूप में ज्ञान क्या है, एबीसीडी, है ना, सार रूप में एबीसीडी, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, अर्थात मेरे संबंध, मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं। मुख्य नौ संबंध से हम बाबा को याद करते हैं, वैसे सर्व संबंध है, पर मुख्य नौ संबंध की अनुभूति हमें, हरेक संबंध की अनुभूति होनी चाहिए, नौ तो हमेशा अनुभूति होनी चाहिए। पहला माँ, माता, पिता, शिक्षक, सदगुरु, बंधु, सखा, साजन और सर्जन, आठ हुए, नौवां बच्चा, तो नौ संबंध में हर एक को नौ संबंध की अलग अलग अनुभूति। हम साढ़े चार घंटा तो इस पे सिर्फ योग कर सकते हैं, है ना, आधा आधा घंटा एक संबंध में खो जाओ, पता नहीं लगे आधा घंटा कहां चला गया, है ना। तो साढ़े चार घंटा लगातार भट्टी कर रही हो ना, तो सिर्फ नौ संबंध की अनुभूति में खो जाओ, बस इसी को योग कहते हैं, इसी को याद कहते हैं ना, संबंध की में खो जाना, यही तो याद है ना। तो सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, इस संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। कोई मेरी पत्नी बनी, पति बना, बच्चे बने, भाई बहन बने, या माता पिता बने, कर्म सिद्धांत के अनुसार बने हैं। कोई मुझे दुख दे रहा है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार, मैंने दुख दिया हुआ इसलिए दुख दे रहा है। कोई मुझे सुख दे रहा है, कोई मेरी महिमा कर रहा है, क्यों मेरी महिमा कर रहा है, वही मैं हूं। एक मुझे गाली दे रहा है, एक मुझे बड़ाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैं इसको गाली दी हुई, मुझे गाली दे रहा है, जिसकी महिमा की वो मेरी महिमा कर रहा है ना। सिर्फ वही है, मैं हूं, वही हूं, दोनों के लिए वही हूं, किंतु हिसाब किताब जिनसे है। तो और मेरा बाबा इसका डायरेक्टर है, मेरा बाप इसका डायरेक्टर है, वो भी कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। अगर मैं बाबा को बोलूं बाबा ये आत्मा ने मुझे बहुत दुख दे दिया, बहुत मेरे को तंग कर रही है, बहुत समय से तंग कर रही है, मानती नहीं, मैं तो कभी गलत से कुछ किया नहीं कि तो मेरे को बहुत तंग है, बाबा इसको ठीक कर लो ना, ठीक कर दो ना। जैसे माताएं कहती है अपने पति के बारे में नहीं बोलती है, बाबा इसको ठीक कर दो ना, इसको ज्ञान बुद्धि में डाल दो ना, ये मेरे को रोज तंग करता है ना, तो बाबा ठीक करेगा उसको? बाबा उसको ठीक नहीं करेगा। बाबा कहेगा बच्चे उसको उसको इशारा देगा कि तुम जो जो बाकी है ना, जो तुम्हारे हिसाब किताब इससे इंटरेस्ट लगा के ले लो, काम नहीं छोड़ना नहीं है ना। हाँ अगर मैं सच्चे दिल से बाबा को याद करता हूं तो बाबा मुझे परखने की शक्ति दे देता है, बच्चे तुम्हारा ही किया हुआ कर्म है, प्लस सहन शक्ति दे देता है ताकि मैं उसको सहन आराम से चुकतू कर सकूं, ठीक है, ताकि हिसाब किताब भी चुकतू हो जाए और हल्का भी रहूं, सूली कांटा बन जाए और कांटा भी फूल बन जाए। नहीं, इसलिए अभी तक जो हुआ है अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? और दुनिया क्या कहती है, अभी तक मेरे के साथ जो हुआ बहुत खराब, बात मत पूछो, दुनिया कहां खोई है? अभी आज सारी दुनिया बीमार क्यों है, डिप्रेशन में क्यों है, नींद क्यों नहीं आती है? मेरे साथ जो अभी तक हुआ अच्छा नहीं हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। तो अगर एबीसी है तो डी है, ये ध्यान रहे, अगर एबीसी नहीं है तो डी है क्या? मैं आत्मा हूं, परमात्मा का संतान हूं, एक एक संबंध की अनुभूति है मेरे बाबा के साथ मेरी, वो अनुभव की अथॉरिटी मैंने प्राप्त की है, तो डी है। डी माना जो हुआ अच्छा हुआ है, नहीं तो अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि हमारे हमारे 80% थॉट्स, बल्कि 80% थॉट्स हमारे पास से आते हैं, जो पास की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स हैं उन्हीं से सारे रोग पैदा होते हैं, सारे शरीर के और मन के रोग, डिप्रेशन, साइकोसिस, स्किजोफ्रेनिया, नींद ना आना और भी बहुत सारी बातें, गुस्सा आता है हमको, बहुत सारी बातें, चिंता लगता है हमको, फोबियाज हो जाते हैं, है ना। तो सारे सारे कहां से पैदा होते हैं? पास से पैदा होते हैं। तो याद रहे अगर एबीसी है तो क्या है? डी, नहीं तो डी नहीं है। डी क्या है? डी में बीमारियां हैं बहुत, है ना। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है क्या हो रहा है? अभी बाबा की गोद में बैठे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना? जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? कहां जाने वाले हैं? सत्युग में जाने वाले, जहां पर क्या होगा? क्या होगा सोचो, क्या होगा? कंचन काया होगी, है ना, और सोने के महलों में होंगे, हीरे जवाहरात लगे होंगे, है ना, 25 साल कमाना नहीं पड़ेगा, है ना, कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, है ना, सिर्फ मस्ती मस्ती हो, कुछ भी नहीं हो करना होगा, है ना, राइट, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, पुलिस नहीं होगी, कोर्ट नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, मस्ती मस्ती बस, ना, जहां तक चल लो जमीन जमीन आपकी है, 10x10 किलोमीटर का महल होगा, है ना, 10 किलोमीटर × 10 किलोमीटर का महल, नहीं पता है आपको वहां प्लॉट का मिनिमम साइज क्या होता है? प्लॉट का मिनिमम साइज कितना होता है सत्युग में? प्रजा का 1 किलोमीटर × 1 किलोमीटर, है ना, और राजा का 10 किलोमीटर × 10 किलोमीटर कितना हो गया? और उसमें भी दीवार नहीं, बिना दीवार का, मतलब कोई बाउंड्री नहीं होती कि ये बाउंड्री, इसके बाद महल तुम्हारा शुरू होता है, नहीं, वो तुम्हारा अपना ही है, सब तुम्हारा ही है, किसी के पे चले भी जाओ बाई चांस को प्रॉब्लम नहीं है, है ना, ये नहीं कि LOC नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, उसमें घुस गए तो वहां गोलियां लगनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जीवन में जाने वाले, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो ये जब है तो इससे पवित्रता की शक्ति आती है, इससे हमारा हमारी बुद्धि और मन पवित्र होता है, ABCD से पवित्रता आती है, और पवित्रता से शांति आती है, शांति में विचार चलने बंद, विचार कम हो गए ना, नहीं तो विचार क्या चलते हैं? विचार कहां आ रहे हैं? 90% विचार या तो पास्ट से आ रहे हैं या फ्यूचर से आ रहे हैं, पास्ट के साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स, साइकोलॉजिकल मानसिक और भावनात्मक चोटें लगी हैं उसके विचार चलते हैं, और 10% भविष्य की इनसिक्योरिटीज, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, तो वो सिर्फ 10% ही प्रेजेंट में, 10% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 5% ही हम मन प्रेजेंट में रहते हैं। और मेडिटेशन आपको क्या सिखाता है? प्रेजेंट में रहना सिखाता है, तो ये जो है इससे पवित्रता की, पवित्रता से फिर शांति, विचार कम हो जाते हैं शांति कहते हैं, शांति और शांति गहरे में जाते हैं, विचार कम होते हैं तो प्यार आता है। प्यार क्या है? अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर, अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर। कोई कैसा भी है, किसी ने मेरे साथ कुछ गाली दी, तंग किया, धोखा दिया, दुख दिया, कैसा भी है, अनकंडीशनल उसकी मैं केयर करूं। और कैसी केयर करूं? डिग्निफाइड, आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। जैसे एक मां का प्यार है अपने बच्चे के लिए, मां बच्चा कैसा भी, काला है, गोरा है, अंग ठीक नहीं है, बीमार है ना, उल्टी लगी हुई है या लूज मोशन हो रखे हैं, खांसी कर रहा है बहुत, तो उसकी क्या करती है मां? केयर करती? नहीं करती। नहीं तो खांसी करता है, तू तो बीमार हो गया, तेरे को तो उल्टी आ लगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, नहीं तू दूर हो जा, ऐसे करती है क्या? डिग्निफाइड केयर, डिग्निफाइड क्या क्या बोलती है उसको? काला है एकदम, मुंह छोटा सा है, बीमार सा है ना, फिर उसको राजा बोलती, मेरे राजा बच्चा, मेरी आंखों का तारा है, चांद है मेरा, सूरज है तू मेरा, नहीं है सूरज क्या? तो उसको सूरज बोलती है ना, चेहरे पे जरा भी चमक नहीं है ना, सारी दुनिया उसको मतलब बोलती है तो बेकार है ना, कि तुम मां क्या करती है, कहना भी नहीं मानता है, बोलता है मम्मी पेट में दर्द हो रहा है मुझे, अभी खाना बना के दो, रात को 12 बजे है ना, शाम को खाना बोला खाना खा ले, नहीं मेरे को भूख नहीं है, रात को 12 बजे कहता है अभी गर्म खाना खाऊंगा, गर्म रोटी खाऊंगा, तो मम्मी मां क्या करती है, रात को 12 बजे अपने पति को नहीं बना के देगी, उसको बना के देती है। इसलिए बच्चा मां को याद कर, बच्चा मां को, इसलिए हमेशा 70 साल का आदमी भी क्या बोलता है, तकलीफ होने पे हाय मां बोलता है, कभी हाय बाप नहीं बोलता है ना, ये हाय पत्नी बोलता है क्या? हाय पत्नी नहीं बोलता है ना, नहीं, क्योंकि मां का वो अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर, वो जो है वो केयर जो ना वो है प्यार। ऐसे प्यार की से अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति है ना, जैसे एक आदमी को मां, 70 साल का आदमी होता है, मां मर चुकी है, वो उसको थोड़ा सा वो समय याद आती ना मां, तो उसको अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, 70 साल के बूढ़े को भी मां की याद आती है तो ना, वो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, और उसकी उसकी उसके एक्सट्रीम को आनंद कहते हैं, और उससे फिर शक्तियां पैदा होती हैं, 8 शक्तियां, परखने की शक्ति, उस आनंद की प्राप्ति, जिसमें आनंद की प्राप्ति हुई वो परखने की शक्ति, ये ठीक है ये गलत है, उस पर निर्णय करते हैं हाँ ये मुझे करना है, इसके लिए विस्तार को सार में ले आते हैं, इसके लिए सब कुछ समेट लेते हैं, उसके लिए सब कुछ सहन कर लेते हैं, उसके लिए सब कुछ सामना करते हैं, उसके लिए सब कुछ संभाल लेते हैं, उसके लिए सब कुछ सहयोग कर लेते हैं। ये 8 शक्तियां आनंद पे आधारित है, तो 7 एनर्जी का सीक्वेंस है, राइट। और सत्युग में हम दिल जो है हमारा इन 7 गुणों से भरपूर है, इसी 7 एनर्जी से भरपूर है, और दिल का जो नेक्स्ट, इसका बुद्धि का नेक्स्ट एस्पेक्ट वो है वो क्या है, हमारी विवेक कहते हैं उसको, परखने की शक्ति। तो इस 7 गुणों के आधार पे हम परखते हैं कि ठीक क्या गलत क्या, मतलब 6 गुणों से भरा हुआ है दिल, और 7वां जो है वो विवेक है, परखने की शक्ति, राइट, उसको विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं इंग्लिश में, और विवेक के आधार पे हमारी बुद्धि निर्णय करती है, राइट। तो बुद्धि निर्णय करती है वो, उसको कहते हैं बुद्धि प्रॉपर, है ना। और फिर हमारा चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस जिसे हम अचेतन मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, राइट, अवचेतन मन, है ना। तो जो अब देखिए सत्य को जब शुरुआत हम चलते हैं, अब इसमें आप समझ जाएंगे कैसे फिर हमको मंजीत जगत, वो भी आप समझ जाएंगे 10-15 मिनट में, कि हमारा जब सत्युग में हम है तो दिल हमारा कैसा है, 7 गुणों से, सत्य से भरपूर है, दिल में सत्य है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, बोलते नहीं है, संस्कारों में है, मेरे सब संबंध उसके साथ है, डिफॉल्ट ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत, संस्कारों में चला गया है ना, जूस अंदर चला गया दिल में, है ना, अभी बोलने का नहीं रहता है, किंतु वो जूस अंदर है ABCD का, तो उसके आधार पर पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद है, तो ये भरपूर है। तो हमारी विवेक कैसा है वहां पे, सत्य विवेक है, कैसा है, सद विवेक है, सद विवेक या ईश्वरीय विवेक है, और हमारी बुद्धि कैसी है, सद बुद्धि है, सद बुद्धि, सत्य बुद्धि, सद ऐसे बुद्धि बोल, सदगुरु जैसे बोलते हैं ना, सदगुरु बोलते हैं तो सदगुरु बोल देते हैं, तो सत्य बुद्धि, सद बुद्धि जिसे कहते हैं, आज भी हम क्या भगवान से मांगते हैं, सद बुद्धि दो, है ना, बच्चे नॉन वीक के जैसे ज्ञानी भी कहते हैं सद बुद्धि दो, तो सत्य बुद्धि हमारी है, और उसके आधार पे हमें निर्णय हम एक सेकंड में करते हैं और वो फाइल सीधी कहां जाती है, उसके बाद मन है, सबकॉन्शियस में नहीं जाती है, सीधी फाइल कहां जाती है, सीधी मेमोरी में जाती है। आप देख लीजिए मन में अपने आप, अब सामने देख लीजिए, दिल, विवेक, बुद्धि, चित्त, उसके बाहर मन के चार एस्पेक्ट, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, और उसके बाहर स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में हमारे पांच कर्मेंद्रियां, आठ अंग ऐसे आगे बाहर। अब ये जो है ये हमारा अंदर का सूक्ष्म शरीर है, ये जो है ना हमारा बुद्धि और मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, और बाहर स्थूल शरीर है। एक ब्रेड ले लो आप, सूखी ब्रेड, और एक प्लेट में दूध डाल दो और ब्रेड को उस पर रख दो, तो दूध कहां गया, ब्रेड में गया। अब दूध का, दूध की शेप क्या है, जो ब्रेड की शेप है, नहीं? तो ऐसा ही हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर एक दूसरे में समाया हुआ है ना। सूक्ष्म शरीर की शेप क्या है, जो हमारे स्थूल शरीर की शेप है, राइट? इसलिए मन और बुद्धि हमारी बॉडी की हर सेल में पहुंचा हुआ है। मन और बुद्धि है तो यहां पर, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे आत्मा है। आत्मा से बुद्धि और मन जैसे सारे शरीर में फैला हुआ है, राइट? मन में एक एक सेल है, बुद्धि में एक एक सेल है। किसी सेल को कुछ हो जाए तो कहां बुद्धि लगी रहती है? अब मान लो मेरे को एक फुंसी हो गई यहां पर, तो बुद्धि कहां लगी रहेगी, उसी फुंसी पे लगी रहेगी बार बार। विचार किसके चलेंगे, उसी फुंसी के चलते रहेंगे ना। घुटना खराब हो रहा है, बैठा यहां हूं, और बुद्धि कहां जा रही है, घुटने में जा रही है ना। संकल्प किसके चल रहे हैं, इसके चल रहे हैं, नहीं ऐसा? तो मतलब बॉडी के हर अंग में बुद्धि कहां पर है, बॉडी के एक एक सेल में बुद्धि है, और मन कहां पर है, बॉडी के एक एक सेल में। तो सूक्ष्म शरीर में हार्ट भी है, फेफड़े भी हैं, लीवर भी है, आंतें भी हैं, आंखें, नाक, कान, मुख, सब कुछ है, दिमाग भी है, सब कुछ है, सूक्ष्म है बट, ठीक है? तो उसका कनेक्शन फिर हमारे इस तरह से हमारे विचारों से है, हमारी भावनाओं से है, हमारी स्मृतियों से है, हमारे वृत्ति से। समझ आ रही? ऊपर से बातें नहीं जा रही, कहीं अंदर जा रही है कि ऊपर से जा रही है, कैसे जा रही है, अंदर जा रही? इसमें बहुत फास्ट नहीं बोल रहा हूं, पर धीरे धीरे बोल रहा हूं। तो दिल में इस तरह समझ गया आप, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर क्या है। तो दिल में अगर हमारे ये है, सातों गुण भरपूर है, तो विवेक हमारा ईश्वरीय है, बुद्धि दिव्य है, और चित्त हमारा कैसा है, चित्त हमारा जो दिल में है वो चित्त में है। दिल में हमारे सत्य है, दिल में सत्य है तो चित्त में आनंद है, राइट? चित्त हमारा शांत है, एकाग्र है और आनंदमय है, इसलिए कहते हैं सच्चित आनंद। दिल में सत्य है तो चित्त कहां, चित्त में क्या है, आनंद है। इसलिए सत्युग में हर आत्मा क्या है, सच्चित आनंद है, आनंद में है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, भगवान के शिव बाबा कौन है, सदा ही सच्चित आनंद स्वरूप है। किंतु मनुष्य आत्माएं सत्युग त्रेता में सच्चित आनंद स्वरूप है, उसके बाद क्या हो जाती है, उसके बाद सच्चित आनंद स्वरूप नहीं रहती है ना। तो ये हमें समझना, अभी मैं क्या बनना है, हमें भी सच्चित आनंद बनना है, राइट? तो ये चित्त में आनंद, हमारे चित्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एकदम आनंद स्वरूप होता है। बल्कि जो फरिश्ते होते हैं ना, फरिश्ते आप टारगेट समझ लीजिए, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, ब्राह्मणों का 100% मन कॉन्शियस होता है, ब्राह्मण नहीं, फरिश्तों का 100% मन क्या होता है, कॉन्शियस होता है, तभी 100% कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर। कॉन्शियस होगा तो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आएगी ना, समझ रहे मेरी बात? और देवताओं का भी 100% मन कैसा होता है, कॉन्शियस होता है, उनका पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए संकल्प सिद्ध होते हैं। अभी मैं एक संकल्प करता हूं, क्या होता है, 5% मन कॉन्शियस है, 95% कंट्रोल में नहीं है, तो 15 संकल्प में से एक संकल्प सिद्ध होता है, समझ रहे? इसलिए आज का मनुष्य दुखी, चेहरे पे क्या दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है, खोया हुआ, रोया, रोने वाला है ना, बस अभी रोया कि नहीं रोया है ना, और खोया हुआ या सोया हुआ, नहीं, खोया, सोया, रोया, तीन ही तरह के मुख होते हैं इस समय ना। तो ये हालत आज के इंसान की है ना। तो और फिर स्मृति में क्या होता है, जो दिल में है वो स्मृति में रहता है, वही ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर स्मृतियां वही रिकॉर्ड होती हैं। स्मृतियां ही हमारे संस्कार हैं, यही सतो प्रधानता है। सातों गुणों से भरपूर, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, तो स्मृतियां सातों गुणों से भरपूर है, वही रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे संस्कार सतो प्रधान है और वृत्ति सबके प्रति आत्मिक है, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, संकल्प कैसे हैं, शुद्ध, शक्तिशाली, श्रेष्ठ और कल्याणकारी। शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी, चार बातें संकल्पों में। और हमारा काया कैसी है, रोम रोम में क्या है, बुद्धि और दिल फैला हुआ है ना, क्या है फिर हमारी, हमारी सूक्ष्म शरीर भी कैसा है, सूक्ष्म काया कैसी है, मन बुद्धि कैसा है, वो भी कंचन है, मतलब सोना है, वो भी सत्व प्रधान है। और ये शरीर कैसा है, वो भी सत्व प्रधान है। तो स्थूल शरीर भी सत्व प्रधान और सूक्ष्म शरीर भी सत्व प्रधान, इसलिए कहते कंचन काया है। वहां ऑक्सीजन 50% होती है, अभी 20% है। तो सोचो 20% में हमारे होठ लाल दिखाई दे, जीभ लाल है, वहां पे 50% ऑक्सीजन में क्या होता होगा, क्या होता होगा, कितनी लाल होती होगी स्किन, कितनी लाल होती होगी, है ना, सोने जैसी काया होगी, नहीं होगी, ऐसी होती है। वहां कोई बैक्टीरिया, वायरस, मक्खी, मच्छर, सांप, कॉकरोच होता ही नहीं, जिंदा ही नहीं रह सकते वो इसमें, मेंढक है ना, तो जिंदा ही नहीं रह सकते, क्योंकि वो कम ऑक्सीजन के प्राणी है, हमेशा जहां रहते हैं जहां पे ऑक्सीजन कम होती है, कोई बैक्टीरिया वायरस वहां होता ही नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति होती है। फिर धीरे धीरे हम जन्म लेते रहते, कम होते जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, द्वापर युग शुरू होती है ना, तो फिर क्या होता है, जहां तक संकल्प सिद्ध, जो संकल्प सोचा वही हो जाता है, पुष्पक विमान में बैठे संकल्प क्या, उड़ जा, उड़ना शुरू हो जाता है, नीचे उतर जा, नीचे उतर जाता, जो संकल्प करते हैं वो चालू हो जाते हैं, हर चीज चालू हो जाती है। प्रकृति में पांचों तत्व स्पिरिचुअलाइज होते हैं, आकाश भी स्पिरिचुअलाइज है, अग्नि भी स्पिरिचुअलाइज है, उसमें आत्मा से कनेक्टेड है। हम बोलते हैं अग्नि जल जा, जल गई है ना, तू ऐसे कर ऐसा हो जाएगा, हवा चले हवा चल गई है ना, जो चीज होती है हमारे हिसाब से हमारे कंट्रोल में रहती है पांचों के तत्व। किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे साथ, हम जब निकलते हैं तो पेड़ पौधे हिलने लग जाते हैं, है ना, उठने का टाइम होता है वो पंछी गाना शुरू कर देते हैं, मतलब प्रकृति के पांचों तत्व हमारे साथ, हमारे रिदम में चलते हैं। जब द्वापर युग आता है, द्वापर का शुरू होता है, हम कहीं घूमने गए होते हैं, मान लो पुष्पक में गए, कहीं पे गए, मान लो हम चले गए ऑस्ट्रेलिया में चले गए, वहां जाके उस दिन विकार देह भान आता है, तो उस समय क्या, सतयुग में क्या होता है, पांचों हमारा ऑरा इतना बड़ा होता है, आभा मंडल, तो हमारा चेहरा नजर नहीं आता है, देह नजर नहीं आती वहां पर, वहां सिर्फ गुण नजर आते हैं, वो ऑरा नजर आता है, आभा मंडल, चेहरे की चमक, गुणों में व्यवहार करते हैं सतयुग में। किंतु जैसे ही जैसे हम तत्व, हमारे समय बीतता जाता है, हमारा आभा मंडल कम होता जाता है, और त्रेता कांत आते आते आभा मंडल स्किन के लेवल पे आ जाता है। स्किन के लेवल पे आने से क्या होता है, क्या होता है, स्किन के लेवल पे आने से अब बॉडी दिखाई देने लगती है, इसकी नाक ऐसी है, इसकी आंख ऐसी है, इसका चेहरा ऐसा है, दिखाई दे, तो बॉडी पर नजर जाने लगती है पहली बार, तो आत्मा की एनर्जी कम हो जाती है, मन की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, अब आत्मा कंट्रोल मन बुद्धि पर कम हो जाता है और मन राजा बन जाता है, मन आंखों के द्वारा देखने लगता है शरीर को, कानों के द्वारा सुनने लगता है, मुख के द्वारा बोलने लगता है, मुख के द्वारा टेस्ट करने लगता है खाने का। सत्य में खाने का टेस्ट नहीं पता होता है ना, खाने का टेस्ट नहीं पता होता, ये बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है इसलिए सब बढ़िया ही होता है, खराब होता ही नहीं है ना, तो उसके बाद पता लगने लगता है, तो देह पे पहले दिन बुद्धि जाती है ना, फिर विकार में गिरते हैं, विकार में गिरने से क्या होता है, अब संकल्प पुष्प विमान कहते हैं उड़ जा, उड़ता ही नहीं है ना, वो रह गया ऑस्ट्रेलिया में रह गया, नहीं ये हालत होती है ना, अब जो जहां है वहीं, अमेरिका में गए तो अमेरिका में रह गए, लंदन वाले लंदन में रह गए, अब क्या करें, और विकार में गिर गए तो अब क्या करें, और उनकी लैंग्वेज भी उसी हिसाब से बदल जाती है, क्योंकि वो बदलते क्यों, क्योंकि हमारी बात किसको पता न लगे हम क्या बोल रहे हैं, है ना। चलो मैं फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, आगे कैसे लैंग्वेज बनी मैं आपको वो बताना चाहता था, पर समय नहीं है हमारे पास। तो इसके बाद अभी क्या होता है, फिर जैसे जैसे हम गिरते जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, ये पांचों तत्वों की आकर्षण, देह की आकर्षण, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, वो अभी दिल में जाने लगते हैं। वो दिल में जाने से क्या होता है, विवेक कंफ्यूज होने लगता है, आत्मा की सातों एनर्जी कम हो गई, सातों गुण कम हो गए, अब उसकी खाली जगह में क्या आता है, खाली जगह में देह आ जाती है हमारी कॉन्शियस दिल में, इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, अब ये आने लगता है ना, ये चीज बहुत अच्छी लगती है खाने में, है ना, ये व्यक्ति ये 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 मकान मुझे ये महल बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा महल दूसरा बनाओ, है ना। अच्छा ये इसको तंग करता है, इसको मार दो, है ना। ये फिर क्रोध, क्रोध का जन्म, लोभ का, मोह का, अहंकार का जन्म होने लगता है और उसके और बाल बच्चे पैदा होने लगते हैं। अब दिल में चला गया, अब हमारा विवेक कंफ्यूज होने लगता है। अब इसके जो मतलब बच्चा है मेरा गलत कर रहा है तो भी उसको मैं कुछ कह नहीं सकता कि उसकी मां मेरे को डांटेगी, है ना। इस तरह से फिर वो हमारे डिफरेंट संकल्प शुरू हो जाते हैं तो फिर उससे हमारा विवेक कंफ्यूज होने लगता है। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती। अब वो फाइलें कहां जाती है, चित्त में जाने लगती है। कहां जाने लगती है, चित्त में जाने लगती है। चित्त में जाने से क्या होता है, अब चित्त में वो फाइलें अनसेव्ड फाइल जाने लगती है तो चित्त बड़ा होने लगता है, राइट। अब मेमोरी में भी क्या चीज जाने लगती है, वो देह की स्मृतियां, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ। आई भाई सब बैठी, बस अभी दो मिनट में पूरा करता हूं। तो देह के स्वभाव संस्कार चित्त अब मेमोरी में जाने लगते हैं, वृत्ति फिर देही की बनने लगती है, भावना उसी अनुसार भावना पैदा होने लगती है और उसी अनुसार हमारे संकल्प चलने शुरू होते हैं और वो जो आत्मा की एनर्जी कम हो गई थी अब देह में एनर्जी जाने कम हो जाती है। तो देह भी साथ साथ जब द्वापर के अंत में, त्रेता के अंत में जो प्रकृति जब हम विकार में जाते हैं तो प्रकृति में बहुत बड़ा विस्फोट होता है तो इस धरती के भी कई टुकड़े हो जाते हैं ना और उसके साथ मतलब काफी सारे प्रकृति में चेंजेस होते हैं तो उसके अनुसार फिर जो है हमारे शरीर में भी काफी चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से फिर प्रकृति चेंज होने पर जैसे जैसे हमारे विकार बढ़ते जाते हैं और फिर रिकॉर्ड में उतनी ज्यादा विवेक कंफ्यूज, बुद्धि ज्यादा भ्रष्ट होती रहती है, चित्त बड़ा होता जाता है। और मैंने 22वां जन्म लिया, 22वें जन्म का चित्त सबकॉन्शियस माइंड बन गया तो उसके बाद जब मैंने 22वां शरीर छोड़ा, 23वां जन्म लिया तो वो जो 22वां जन्म मैंने पाप किए थे वो अनकॉन्शियस माइंड में चले गए, वो उससे बनता है अवचेतन, अचेतन मन। और मतलब सबकॉन्शियस माइंड इस जन्म का होता है और अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड कौन से जन्म का होता है, पिछले जन्मों का होता है। और जब मैंने शरीर छोड़ू, 23वां छोड़ा तो 23वें जो सबकॉन्शियस माइंड कहां चला गया, वो अचेतन में चला गया, अनकॉन्शियस में चला गया। इस तरह से अनकॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाता है और हर जन्म में सबकॉन्शियस रहता है, ठीक है। वो सबकॉन्शियस के आधार पर सपने आते हैं, सारे सपने सबकॉन्शियस के आधार पर आते हैं, जो चीज हम कर नहीं पाते, जो फाइलें हम सेव नहीं कर पाते, जिनके पे डिसीजन नहीं ले पाते, वो सपनों में आती हैं। और इस तरह से हमारी नींद की डिस्टर्बेंस होने लगती है, नींद गहरी जैसी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती तो हम सारा दिन थके थके रहते हैं, आलस्य आता है, अलबेलापन आता है, फिर ना और चीजें पैदा होती हैं तो इस तरह हमारी स्थिति खराब हो जाती है। इस तरह से हमारा मन, इस तरह से हमारा विकार हो जाता है। अब एक ही साधन है, एक साधन है, वो लास्ट साधन क्या है, मन को कैसे जीत सकते हो, आत्मा के अंदर फिर दोबारा दिल में क्या भरो, दिलाराम को बिठा लो, दिल में दिलाराम को बिठाओ। दिल में दिलाराम का बैठेगा जब चार बातें अपने दिल से निकालोगे तो। पहली है देह, ये अंदर भाने अंदर बैठ गया, मैं स्थूल देह, सारा दिन इसको देखते हैं, इसमें व्यवहार करते हैं तो अंदर से अपने आप से बातचीत करते, चलते फिरते बातचीत करो, ये मैं देह नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं सात गुणों से, सात एनर्जी से बॉडी को नरिश कर रहे हूं, मैं चला रही हूं देह को, मैं हार्ट को चलाती, मैं सांस लेती हूं, मैं पेट में खाना पचाती, मैं आंखों से देखती, बार बार फील करो कि मैं आत्मा देखती हूं। फिर देह के संबंध, दूसरी चीज दिल में क्या बैठी है, देह के संबंध बैठे, देह के संबंध, मां बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, इन सबको बुद्धि से निकालो, घर से मत निकालना, बुद्धि से निकालना, ठीक है, दिल से निकालना है ना, दिल से निकाल देना है ना, दिल में उनको देखो कि साथ में कोई जाएगा नहीं, है ना, बड़ा अपने आप से बातचीत करो, क्या मेरे साथ जाएगा, क्या आप सदा मेरे साथ परमानेंट है, नहीं है, ना था ना है ना रहेगा, तो इसलिए अपने आप से बातचीत उनको दिल से निकालते जाओ। मेरा कौन है, मेरा तो एक शिव बाबा जो सदा है, हर युग में मेरा है, है ना, तो उससे बातचीत करते जाओ, एक संबंध की अनुभूति बाबा से करते जाओ तो ऑटोमेटिक ये संबंध निकलते जाएंगे। फिर तीसरी बात, देह के स्वभाव, ये पांच विकार देह के स्वभाव है, काम क्रोध लोभ मोह का, देह के स्वभाव स्वभाव मेरे साथ नहीं जाएंगे, यही खत्म करने पड़े तभी हम ऊपर जा सकते हैं, है ना, उन पर विजय पानी पड़ेगी। फिर देह के संस्कार क्या, आलस, अलबेलापन, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, ये देह की आदतें हैं, ये भी निकालनी पड़ेगी, यही छोड़ के जाना पड़ेगा, सत्युग में तो ये चीजें होती नहीं तो वो वहां पर नहीं जाएंगे, तो इसको यहां खत्म करते जाओ, ठीक है। और देह के पदार्थ, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब यहीं रह जाएंगे, कोई भी साथ नहीं जाएगी, क्या साथ जाएगा, दैवी गुण साथ जाएंगे, जो अभी हम दैवी गुण कैसे बनते, सात गुणों के मिश्रण से दैवी गुण बनते, सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, ये जो है सारे बनते हैं ना, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, जितने भी दैवी गुण है, 56 दैवी गुण जो कहे जाते हैं, वो सारे इन डिफरेंट डिफरेंट मिश्रण से बनते हैं, सातों गुणों के मिश्रण से बनते हैं। जब आत्मा सातों गुण में भरपूर है तो दैवी गुण हमारे कर्मों में दिखाई देते हैं, दैवी गुण कर्मों में दिखाई देते हैं, अंदर नहीं होते, कर्मों उसके मिश्रण से हमारे बाहर कर्मों में दैवी गुण दिखाई देते हैं। तो वो दैवी गुण जितने धारण करता जाऊं मैं, ईमानदारी है ना, आज्ञाकारी, वफादार, ईमान, फरमानबरदार, ये सब दैवी गुण है। तो ये हमारे अंदर कर्मों में आना, ये मेरे साथ चलेंगे। तो इस तरह से अपने आप को अनुभव करते जाओ, तो ये ABCD अंदर मतलब दिल में भरते जाओ। वो चार बातें निकालनी है, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थ, इसको दिल से निकाल के, और तब बाबा हमारी बुद्धि में आके बैठ जाता है, दिल में आके बैठ, दिल में बैठेगा, सातों गुण भरपूर हो जाएंगे, फिर वापस विवेक काम करना शुरू कर देगा, विवेक वापस ईश्वरीय हो जाएगा, बुद्धि वापस दिव्य होती जाएगी, और चित्त हमारा खत्म होता जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस होता जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे स्मृतियों में रिकॉर्ड होगा, ABCD रिकॉर्ड होता जाएगा, वृत्ति आत्मिक होती जाएगी, भावना शुभ होती जाएगी, संकल्प शुद्ध, शक्तिशाली, श्रेष्ठ होते जाएंगे, और फिर हमारी ये बॉडी जो बेकार हो चुकी है, कटारा, ये भी साथ साथ काम हेल्प करेगी, चलाएगी, सेवा कराएगी, और फिर हमारे पुराने विक्रम पिछले जन्मों के धीरे धीरे जन्म बाई जन्म 83, 82, 81, 80 जन्म बाई जन्म वो विनाश होते जाएंगे, विनाश होते होते जब 21वें जन्म पे पहुंच जाएंगे तो हमारा 100% मन क्या हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, कॉन्शियस माना अनकॉन्शियस खत्म हो जाएगा, सब कॉन्शियस खत्म हो जाएगा, और हम फरिश्ता बन जाएंगे। यही स्थिति है, मन जीते जगत जीत। ओम शांति। चार नियम, चार मर्यादाएं जो उस पर पक्का करना है, अमृत वेला कभी ना भूलो, क्लास में जाके मुरली सुनो, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनो, हर आधे घंटे में मुरली के पॉइंट रिवाइज करो, है ना, जेब में ही रखो मुरली लव लेटर के रूप में, उसे बार बार पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मनन चिंतन करते रहो। चौथा, सोने के पहले लेटर लिख के बाबा को हर बात बताओ, बाबा सारे दिन मुझसे ये गलतियां हो गई, चार्ट भरो, फिर मुरली दोबारा पढ़ो, फिर मुरली याद करके दोबारा सो जाओ, और सुबह जल्दी उठ जाओ। तो ये चार नियम है, चार परहेज है पवित्रता। जितनी ज्यादा गहराई से पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी, वैध संकल्प, ये ऐसा क्यों करता, ये क्यों करती, क्या क्यों कैसे, इससे भी परे जितनी गहराई पवित्रता की होगी उतना अच्छा अमृत वेला हुआ, उतनी अच्छी मुरली अंदर जाएगी, उतना सारा दिन टेंशन रहेगा, उतना सच्चाई से लेटर लिखेंगे, चार्ट भरेंगे, पहला पवित्रता, दूसरा शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में, बाजार का कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, आइसक्रीम, है ना, ये चीजें खाते ना हम, कुछ नहीं है तो ये तो मशीन की बनी चीजें खाते हैं, वो सब खाने छोड़ दो, चॉकलेट, है ना, सब खाने छोड़ के बाबा की याद, बेसिक खाना खाओ जो बहुत जरूरी है, स्वाद के वशों के मत खाओ। तीसरी बात, सत्संग, बाबा और बाबा की मुरली के अलावा तो कुछ संग मत करो, कुछ और किताबें पढ़ना, मैगजीन देखना वो बंद कर दो। चौथी बात, दैवी गुणों की धारणा, जरा भी इतना भी क्रोध, इतना भी चिंता, इतना भी जल्दीबाजी मत करो, शांत रहो और बाबा की याद में रहो, चार परहेज करते जाओ तो अच्छा अमृत वेला होगा, अच्छी मुरली अंदर जाएगी, अच्छा टेंशन रहेगा, अच्छा चार्ट चेकिंग होगा सच्चाई से, वो फिर हमारा योग लगता जाएगा और हम उतना ही हमारा मन जीते जगत जीत बनते जाएंगे, विक्रम विनाश होते जाएंगे और जल्दी जल्दी बाबा के साथी बन के जाएंगे, बराती बन के नहीं। ओम शांति।
धन्यवाद सतीश भाई जी, दिल की गहराइयों की बातें दिल को छू गई और दिल को राहत भी आई और दिलाराम भी बैठ गया, है ना, कि नहीं बैठा अभी, हाँ, लगता है सब कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन सब क्लीन हो गया और कॉन्शियस हो गए, है ना, तभी तो फरिश्ता स्थिति का यहाँ हम तपस्या का अनुभव कर सकेंगे। आपने अपना अमूल्य समय देकर शांतिवन से आप खास पधारे, आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। और अभी हम बाबा को एक मिनट याद करेंगे।